यशाया अध्याय 63। अब ध्यान दीजिए कि पुनरुद्धार से पहले परमेश्वर के क्रोध का दिन आ रहा है, महाक्लेश का समय। ये तो पुनरुद्धार से पहले होना है। अध्याय 63 के पहले 6 पद इस महाक्लेश का वर्णन करते हैं। 2 प्रश्न यहां पूछे गए जिनका उत्तर परमेश्वर देता है। यशाया अध्याय 63 पद 1, ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? प्रश्न, वो कौन है जो एदोम से आता है बैंजनी वस्त्र पहने हुए? इसका उत्तर है यशाया अध्याय 63 पद 1 में आगे लिखा है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है, या अथवा अब भी ये प्रश्न बना हुआ है। यशाया अध्याय 63 पद 1, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है, इसका उत्तर है यशाया अध्याय 63 पद 1 के अंत में लिखा है, ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवंत और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? परमेश्वर कह रहा है, ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। प्रश्न है यशाया अध्याय 63 पद 2, तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरा वस्त्र हौद में दाग रौंदने वाले के समान है? तेरे वस्त्रों पर दाग क्यों है? ऐसा लगता है तू दाग रौंद रहा था। ऐसा लगता है कि तुझ पर दाग का रस खूब उछला है। उत्तर है यशाया अध्याय 63 पद 3 और 4, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखे रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हां, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू की छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा दब्बेदार हो गया है, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। इस प्रश्न का उत्तर है कि वस्त्र लहू के कारण लाल हुए हैं। वो पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध की प्रचंडता का दाग कोल्हू में पेल रहा था। यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 देखेंगे तो आप ऐसा ही अंश वहां देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 10, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वो कौन है? वो जो पशु की आराधना करेगा और अपने माथे पर और हाथ पर उसका चिन्ह लेगा। आगे हम पशु की आकृति के विषय बड़ी रोचक बातें देखेंगे, क्योंकि वे आनुवंशिक अभियांत्रिक है। आनुवंशिक अभियांत्रिक वैज्ञानिकों का शोध तथा पशुओं के आकार एवं उनको बोलने की शक्ति प्रदान करना, समस्त संसार के ऊपर उनका पराक्रम और उनकी पूजा के बारे में कुछ रोचक बातों को सीखने के लिए मिलेगी। परंतु जो कोई पशु या उसकी मूर्ति की उपासना करेगा या अपने माथे अथवा हाथ पर उसका चिन्ह लेगा, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके कटोरे में डाली गई है पिएगा। आप पद 14 में देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 14 से 20, और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिस पर सोने का मुकुट और हाथ में चोका हसुआ है। फिर एक और स्वर्ग दूत ने मंदिर में से निकलकर उसे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्ग दूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हसुआ था। फिर एक और स्वर्ग दूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्ग दूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ डाला और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में भी देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से 15। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। पद 15, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेंगे। यशया इसी के साथ संबंधित है। अतः प्रश्न ये है, वो कौन है जो एदोम देश से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। तेरे वस्त्रों पर ये धब्बे कैसे हैं? मैं दाग को आवेश में रौंद रहा था, उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया। जिस दिन परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा वो दिन अति भयंकर दिन होगा। इब्रानियों अध्याय 10 पद 28 से 31। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम उद्धार पाने के विषय में चर्चा करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कहता है उद्धार से आपका क्या तात्पर्य है, मैं बताता हूं कि उद्धार का अर्थ यह है परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति पाना, वो क्रोध जो पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। उद्धार का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होता है। परमेश्वर के क्रोध से उद्धार पा रहे हैं और महिमामय अनंत काल के लिए उद्धार पा रहे हैं। रोमियो अध्याय 1 पद 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने में विलंब कर रहा है। हम परमेश्वर को दुर्बल समझते हैं, परमेश्वर के धीरज को लोग दुर्बलता समझते हैं। ये एक गंभीर त्रुटि है। उसके पलटा लेने का और क्रोध का दिन तो अवश्य आएगा। उसने ये शपथ खाई है, उसने कहा मैं चीजों को बनाकर त्याग नहीं करता। परमेश्वर कहता है मैं निश्चय ही अपना वचन और उद्देश्य पूरा करूंगा। परमेश्वर ने अपना कहा आज पूरा किया है, तो ये सोचना कि वो आगे नहीं करेगा ये मूर्खता है। शेष भविष्यवाणी निश्चय ही पूरी होगी। हम लोग आखिरी समय में वास कर रहे हैं, जहां पर परमेश्वर न्याय के जरिए मानव इतिहास पर अपना हस्तक्षेप करेगा। अब लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं कि अतीत में परमेश्वर ने इतिहास पर हस्तक्षेप किया था। पत्रस कहता है लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं कि अतीत काल में परमेश्वर ने संसार के ऊपर न्याय किया था। लोग इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। लोग सोच रहे हैं कि सृष्टि के समय से ही संसार ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अतीत में हस्तक्षेप किया था और भविष्य में भी ऐसा करेगा, परंतु भविष्य में होने वाले न्याय रूपी हस्तक्षेप हमें परमेश्वर की महिमावान तथा नए राज्य में ले जाएगा, जिसकी हमें प्रतीक्षा है। अब पलटा लेने का दिन मेरे मन में है, मुक्ति पाने वालों का वर्ष आ गया है। यशाया अध्याय 63 पद 5 और 6। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही बुझबल से उद्धार किया और मेरी जल जलाहट ही ने मुझे संभाला। हां, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जल जलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। पृथ्वी पर आने वाला परमेश्वर का दंड, पद 7 से लेकर समस्त अध्याय 64 में एक अति मनोरम प्रार्थना है जो यशया परमेश्वर के बचे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता है। यशाया अध्याय 63 पद 7 के अंत में लिखा है, मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूंगा। क्या ये एक विचित्र बात नहीं है कि जिस दिन परमेश्वर अपने क्रोध और पलटा लेने तथा दंड का दिन घोषित करता है, तब यशाया प्रार्थना करता है, मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूंगा। यशाया अध्याय 63 पद 7। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूंगा। यदि हम चारों ओर देखें कि परमेश्वर ने हम पर क्या उपकार किए हैं, तो हम जानेंगे कि उसकी करुणा कैसी है। वो अति करुणामय है। यशाया अध्याय 63 पद 8 और 9। क्योंकि उसने कहा निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वो उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। मेरे लिए ये एक बहुत ही रुचिकर धर्मशास्त्र है। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। आरंभिक शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी निकट पहचान को समझ लिया था और वे जान गए थे कि जिस सताव को वो सहन कर रहे थे वो वास्तव में यीशु के कारण उन पर आ रहा था। उनके सारे संकटों में उसने भी कष्ट उठाया। जब उन्हें पीटा गया और आज्ञा दी गई कि यीशु के नाम में वे प्रचार ना करें, तब प्रभु की स्तुति करते हुए चले गए कि उन्हें इस योग्य समझा गया कि वे यीशु के लिए कष्ट उठाएं। जब आप प्रभु के नाम में किसी भी उत्पीड़न को सहन करते हैं, तब आपके समस्त कष्टों में वो आपका सहभागी होता है। वो हमारे दुखों को उठा लेता है। वो हमारे साथ विपत्तियों को झेलता है, क्लेशों को झेलता है, उत्पीड़न सहन करता है। यशाया अध्याय 63 पद 9। और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। परमेश्वर उनसे कैसा प्रेम करता था, उनकी कैसी भलाई करता था, उन्होंने क्या किया। यशाया अध्याय 63 पद 10 से लेकर 16 तक। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र नाम को खेदित किया। इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वो कहाँ है, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दैने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसे घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी वो कहाँ है। जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे, तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इसराइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। उन्होंने परमेश्वर को पिता और मुक्तिदाता स्वीकार किया। यशाया अध्याय 63 पद 17 से लेकर 19 तक। हे यहोवा तू हमें अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रहे, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान जो कभी तेरे ना कहलाए।